से कई प्रैक्टिकल विषयों के बारे में अनुभव युक्त बातें हम सभी सुन रहे हैं। आप लोगों के भी अपने इस ईश्वरीय ज्ञान के और योग के अभ्यास के अनुभव जरूर होंगे। इसलिए मैं कल भी कह रही थी कि अगर उसकी किताबें लिखी जाएं तो पता नहीं कितने वॉल्यूम्स हो जाएंगे। कई बार हम उन अनुभवों को अक्षरबद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं या लिख सकते हैं। हर एक की उन्हें अक्षरबद्ध करने की ताकत नहीं होती, या वो सोचते नहीं है इस बारे में कि इन्हें लिखना चाहिए। कुछ लोग तो बहुत ही अलंकारिक शब्दों में और बहुत ही सुंदर, जो मन को अच्छे लगे ऐसे शब्दों में जब लिखते हैं या कहते हैं तो औरों को भी लाभ होता है। ये लिखे और कहे इसीलिए जाते हैं ताकि औरों को भी लिखा, औरों को भी उसका लाभ हो। इसीलिए दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपने जीवन की बातें लिखते हैं, और उन ऑटोबायोग्राफीज को जब लोग पढ़ते हैं तो उनसे लाभान्वित होते हैं। आज का जो अभी का विषय है वो विषय है समर्थ स्थिति। समर्थ माना पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी जिसमें स्ट्रेंथ है, या मैं उसको अगर इंग्लिश में कहूं तो एलिवेटेड, श्रेष्ठ, ऊंची ऊंची स्थिति, स्ट्रेंथ है जिसमें बहुत सारी ताकत है। कैसी ताकत है? आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन जब आध्यात्मिक ताकत बढ़ती है ना तो इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत भी बढ़ती है, फिर इंटेलेक्चुअल और फिजिकल भी बढ़ने लगती है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं इसके हमारे पास। जब हम सुनते हैं लोगों की बातें और कहानियां तो हमें पता चलता है कैसे हर प्रकार की ताकत इस आध्यात्मिक ताकत से विकसित होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है अगर उसका अभ्यास किया जाए, सचमुच अभ्यास किया जाए, तो दीज आर नॉट द थिंग्स जस्ट टू से। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मिलता है, जैसे कई बार हमारे वक्ताओं ने कहा कि ज्ञान आपको भी अभी कहा जाए आत्मा के बारे में बताओ, आप सब सुना देंगे, कितनी सारी अच्छी बातें सुना देंगे। तो वो ज्ञान जो है वो मेरा जीवन बन गया, वो आत्मा का ज्ञान और मैं सिनोनिम्स हो गए, एक हो गए। अब मैं आत्मा हूं, मुझे अब ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब आत्मा का जो ज्ञान मिला, आत्मा के गुणों का जो ज्ञान मिला, पता चला मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, तो वो ये सारे गुण और मैं प्रायवाची है, हम एक हैं। शांति चाहिए, इनके पास चले जाओ। शक्ति चाहिए, इनके पास चले जाओ। लोग हमें देखें और लोगों को शांति की महसूसता हो, लोगों को वाइब्रेशंस मिले, लोगों को उस वातावरण में वो ताकत मिले। जैसे सेंटर्स पर जब भाई बहन आते हैं ना, कहते यहाँ बाबा के कमरे के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं, कहते हैं ना यहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स हैं। कई ऐसे भाई बहन होते हैं नए नए होते हैं, यंग होते हैं, बहुत ज्ञान, क्योंकि बाबा की मुरली में तो डायरेक्ट ज्ञान की बातें आती है ना, तो डायरेक्ट मुरली नहीं उनको एकदम क्लिक होती, लेकिन बाबा का कमरा और वो वाइब्रेशंस क्लिक होते हैं उनको, और वो वाइब्रेशंस में आकर के बैठ करके उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर लेना चाहते हैं, अपने आप को उन वाइब्रेशन से बनाना चाहते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि उस स्थान का एक ऑरा बन जाता है, और वो ऑरा जो है वो आकर्षित करता है। पर वो ऑरा बनाने वाला कौन? मूल तो ऑरा व्यक्ति का होता है ना, तो जो वहां रहने वाले, वहां अभ्यास करने वाली आत्माएं होती हैं, तो वो उनका ऑरा बनता है, उससे उस स्थान का ऑरा बन जाता है। आप मंदिर में जाओ और किसी क्लब में चले जाओ, अलग वाइब्रेशंस है ना, कोई कोई स्पेशल ईट मिट्टी चूना तो नहीं लाया गया, वही ईट मिट्टी चूना वहां यूज हुआ, वही यहाँ यूज हुआ, तो दोनों के वाइब्रेशंस अलग हैं, क्योंकि वहां जाते ही जिन आत्माओं ने जो विचार किए, जो संकल्प किए, जो ख्याल किए, वो विचार जैसे थे वैसा उस स्थान पर वाइब्रेशंस छूट गए और वहां का वातावरण बन गया और उस स्थान का एक ऑरा पॉजिटिव बन गया। आपको पता होगा शायद, आजकल काफी समय हो गया इस बात को, ये रशियंस ने डेवलप की है क्रिलियन फोटोग्राफी, पता है? ऐसे आजकल तो मार्केट में मिलने लगे ऐसे कैमरास, जिस फोटोग्राफी में जनरल फोटो हम कैमरा से खींचते हैं तो सिर्फ हमारा चेहरा आएगा, हम आएंगे, लेकिन उस फोटोग्राफी में हमारा ऑरा आता है। हम लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, उनका एक ऑरा होता है ना। अब हम डबल ताजधारी, तो डबल ताजधारी में कौन सा ताज? एक तो लाइट का, एक तो रतन जड़ित। तो लाइट का माना कोई कनेक्शन किया हुआ होता है, वो तो लाइट, तो वो ऑरा होता है, वो फिजिकल नहीं होता, वो कोई कनेक्शन करके लाइट नहीं लगाई हुई होती, वो आत्मा का अपना ऑरा, आत्मा की अपनी पवित्रता, आत्मा की अपनी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ, इसलिए वो ऑरा गोल्डन होता है। अगर आजकल सबकी क्रिलियन फोटोग्राफी करें तो किसी का ऑरा ग्रे आएगा, किसी का काला आएगा, किसी का कैसा आएगा, किसी का सिल्वर भी आएगा, किसी का व्हाइटिश आएगा, डिफरेंट ऑराज हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रकार के थॉट्स हैं, और विचार ही हमारी ताकत बनाते हैं। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही होता है, और वैसा ही होता है माना क्या, कि मेरी स्थिति वैसी ही बनती है। जैसे हम सोचते हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, कर तो लिया, मैंने कर तो लिया है, अच्छा भी किया है, मुझे पता है मुझे अच्छा करना आता है, मैंने पूरा भी किया है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे पता है, पर फिर भी मन में विचार चल रहा है, पता नहीं किया तो है, पता नहीं, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं। हर बार तो करते हैं वैसे, लोग महिमा तो करते हैं, पर इस बार भी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो वो मान की इच्छा भी है, एप्रिसिएशन मिलने की इच्छा भी है, और पता नहीं पता नहीं, कहते हैं पता नहीं करके पता ही काट दिया। और बाबा के महावाक्य है इस बात पर कि अगर हम पता नहीं कहते हैं ना, तो हम अपनी हिम्मत को हिला देते हैं, हम अपनी हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। हम हिम्मत जो है हमारे जीवन की फाउंडेशन होती है। आप इस टेबल के पांव को हिला दें, स्क्रू ढीला कर दें, तो क्या होता है ना? कहते ये हिल क्यों रही है, उसके ऊपर आप कुछ रखेंगे ना, कहते इस पे मत रखो, दूसरी जरा जो अच्छी वाली हो ना वो ले आओ। माताएं भोजन बनाती है ना किचन में, तो आजकल कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें स्क्रू होता है, वो नॉनस्टिक तवा आता है, नॉनस्टिक कढ़ाई आती है, या कुकर का ढक्कन होता है, उसका बर्तन होता है, या आपके चाय बनाने वाला बर्तन, सब में ना वो हैंडल होता है, उसको स्क्रू लगा होता है। तो ये पानी डलते डलते धुलते धुलते शायद एक ये टेंडेंसी सी है उसमें कि वो स्क्रू जो है ना वो ढीला होता जाता है, हर थोड़े समय में वो डुक डुक करने लगता है ना। और फिर मान लो आप बहुत गर्म है, एकदम तेज गर्म हो गया, और आपने उसको जैसे कभी फ्लेम, उसको लकड़ी का हैंडल होता है ना, उसको लग गई तो भी ढीला हो जाता है वो। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, जब उसको गैस पे रखता है, कहते हैं फ्लेम उतनी होनी चाहिए जितना बर्तन हो, उसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कई बार हमको लगता है जल्दी पक जाएगा शायद, तो इतनी तेज फ्लेम कर देते हैं, बर्तन छोटा फ्लेम बड़ी, उसमें भी नुकसान होता है, बर्तन खराब होता है। तो समझदार बंदा क्या करता है, उतनी फ्लेम रखता है, और अगर वो पानी लगते लगते या अन्य किसी वजह से वो स्क्रू ढीला होता है, तो समझदार माताएं क्या करती हैं, अपने चाकू भी रखती हैं, कैंची भी रखती हैं, और स्क्रू ड्राइवर भी रख देती हैं। जैसे ही जरा सा वो ढीला होता है ना, उसको टाइट कर देती हैं। जैसे जरा सा ढीला होता है, अब मान लो घर में बहू आई और उसने नहीं किया, थोड़ा सा आलस आता है, ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा ना। कई लोगों की ऐसी भी मेंटेलिटी होती है, तो माताएं है ना सिखा देती हैं कि बेटा आप इसको ऐसा कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, प्यार से सिखा देती है, उसको भी आदत पड़ जाती है। तो जैसे ही जरा सी कोई असमर्थता जरा सा लगे, ये कैसे होगा, मान लो ऐसा वाला थॉट मेरे अंदर आता है, व्यर्थ ही कहेंगे इसको। आज की मुरली में भी था ना, बाबा ने तो आज उसको परचिंतन ही कह दिया, नहीं तो जनरली परचिंतन माना हम निंदा से उसको ये करते हैं कि निंदा करना माना पर चिंतन, लेकिन व्यर्थ जो हमारे काम की बात नहीं है, अननेसेसरी है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दो लोग बातें कर रहे हैं, हम बीच में ऐसे ही टांग अड़ाते चले जा रहे हैं, हम वैसे ही उसमें घुसपैठ करके अपनी बात बिना राय, बिना कोई मांगे राय बहादुर बन के राय देते जा रहे हैं, व्यर्थ है। तो ऐसा जरा सा भी व्यर्थ आने की अगर गुंजाइश भी होती है ना, वो कहते हैं एन आयोटा ऑफ इट, इतना सा भी अगर आने की गुंजाइश होती है ना, तुरंत उसको हटा दो। जैसे तुरंत स्क्रू को टाइट करते हैं ना, ताकि वो ठीक काम देता रहे। और देखा है ऐसे बर्तन से सालों तक काम देते हैं, खराब नहीं होते। और अगर आप ध्यान ना दो तो आपको पूरा हैंडल हिलाना पड़ता है, सब चीज चेंज कराना पड़ता है, उसका इतना बड़ा स्क्रू होता है जितना बड़ा ढक्कन होता है हैंडल। हम भी अगर व्यर्थ आने दें, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, हम आने देते हैं, आने देते हैं, तो इतनी आदत पड़ जाती है, बात बात में व्यर्थ पैदा होता है, बात बात में व्यर्थ पैदा होता है। डाउट आएगा, आप अनुमान लगाएंगे, फिर आप उसकी चर्चा में जाएंगे, किसी को सुनाएंगे, खुद चिंतन करेंगे, तो स्थिति का कहां ठिकाना है, स्थिति तो गायब है। और जब स्थिति नहीं है, मैं ऐसा मानती हूं, अगर हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं है, मान लो मैं इमोशनली हर्ट होती रहती हूं, मैं मेंटली हर्ट होती रहती हूं, होते हैं दुनिया में आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो मेंटली हर्ट करते रहते हैं, उनका बोल ही ऐसा होता है, बोलते ही ऐसा है, या व्यवहार ही ऐसा करते हैं, या किसी की नेचर बन गया तो हमारे पाले पड़ते रहते हैं ऐसे लोग। लेकिन मुझे मेरी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, आई एम इमोशनली स्ट्रांग, मुझे अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। मैं फील नहीं करती हूँ, सोचती हूँ चलो बाबा ने कहा है ना बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट था, अच्छा है चलता हो गया। और कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार आप बोलते नहीं है सामने से, कोई कुछ बोल रहा है, आपने बाबा के ज्ञान को यूटिलाइज किया है और आप कुछ कहते नहीं है, चुप रहते हैं, उसको अंदर ही अंदर टॉलरेट करके खत्म कर देते हैं, पर वो व्यक्ति तो उस बात का लाभ ही ले रहा है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार, पच्चीस बार, सौ बार ना? और कई बार वो मतलब एक नेचर हो जाती है। तो कभी कभी फिर हम स्ट्रांगली लेकिन प्यार से हम उसको बात कह सकते, हम अंदर से चिढ़ते नहीं है, हम अंदर से हर्ट नहीं हुए, तो सामने व्यक्ति लाभ ही लेता चला जा रहा है, अन्याय करता चला जा रहा है, तो कभी तो कहना पड़े, तो अंदर से हम स्ट्रांग हैं। और हम देखते हैं तो वो बात का असर होता है, होता है। मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होती, स्थिति बनी रहती है। और अगर जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो सेकंड के लिए वो बात आई भी सही, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो बात चली भी गई, चली भी जाती है। इसलिए योग बाबा से लगा रहता है। बहुत बार मैं बहुतों से सुनती हूँ, बहुत भाई बहन आते हैं कहते हैं कि दीदी योग नहीं लगता, डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे घर से, चाहे बच्चों से, चाहे पति से, चाहे परिस्थितियों से, बातें आती रहती हैं, आती रहती हैं। और नेचुरली जब बातें मन में होती हैं तो सवाल ही नहीं कि बाबा से हम बातें कर सके, क्योंकि और बातें मन में होती हैं। इसलिए अगर स्थिति को समर्थ बनाना है तो समर्थ स्मृति चाहिए, स्मृतियां समर्थ चाहिए। अगर स्मृतियां समर्थ नहीं है, स्मृतियां शक्तिशाली नहीं है, स्मृतियां इधर उधर की हैं, पास्ट की हैं, इसकी उसकी फलाने की ढिकरे की, इसने तब मेरे साथ ऐसा किया था, इसने अब मेरे साथ ऐसा किया, ये हमेशा ऐसा ही करता है, ये तो है ही ऐसा, जैसे ही उस व्यक्ति को देखा सारा पास्ट की रील रिकॉल हो गई। अगर ऐसी वाली स्मृतियां हमारे मन में रहती हैं तो स्थिति बनी नहीं, हलचल वाली रहेगी, हलचल रहेगी। अभी कोई मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी स्थिति बहुत हलचल में होती है, तो मैंने उनको यही कहा, मैं क्लास में ये बात लिखती हूँ, इसीलिए हलचल में रहती है। आप चेक करो अपनी स्मृतियों को, चेक योर सेल्फ। हम नहीं चेक करते, सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करते हैं, मैं नहीं कहती अभ्यास नहीं करते, रेगुलर मुरली में आते हैं, योग में आते हैं, रेगुलर सेवाओं में इन्वॉल्व होते हैं, तन से करते हैं, कर्मणा करते हैं, मन से करते, धन से करते, अपनी कलाएं लगाते हैं, बाबा का मधुबन से निमंत्रण आता दौड़े चले आते हैं बाबा से मिलने के लिए, यहाँ सेवा में अपना जो भी लगा सकते हैं वो लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जो एक स्थिति पहुंचनी चाहिए ना, वो हायर लेवल तक, वो नहीं पहुंच, वो जो वो आनंद है ना बाबा, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो नहीं मिला है और जरूरत है उसको लेने की। जो कल भी बात चल रही थी गोप गोपियों वाली बात, कि मस्त थी वो, लगन में मगन थी वो, परवाह नहीं थी उनको कोई। बाबा भी क्या कहते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। पर हमको तो बहुत कुछ चाहिए है ना, ये अच्छा व्यवहार करना है। आज है ना, मैं सेंटर पर गई तो मैंने दीदी को ओम शांति की, पता नहीं क्यों दीदी ने ओम शांति का जवाब ही नहीं दिया। शायद है ना, मैं दीदी को ना पसंद नहीं हूँ, पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। दीदी के पास तो 100, 200, 500 लोग आते हैं, ध्यान नहीं रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है वास्तव में। दीदी है ना, उसको टोली खिलाती है, मेरे को नहीं खिलाती। मेरी मम्मी आई, उसको चाय पूछी, मैं तो रोज आती हूँ, मेरे को तो नहीं पूछती। तो आप तो रोज आते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन जरूरत होगी पूछ लेंगे। अच्छा, आपको दिल हो तो बोल दो दीदी चाय पीनी है, आप भी बनाओ, दीदी को भी पिलाओ ना, जो मना थोड़ी है बाबा के घर में। लेकिन ये क्या होता है, अननेसेसरी अनुमान, अननेसेसरी डाउट्स, अननेसेसरी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आप अंदर देखेंगे ना, थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, थोड़ी सी। उसको दिया, उसको बड़ी वाली सौगात दी, पैकेट बड़ा उसका था, मुझे छोटी वाली दी। ज्यादा वैल्यूबल तो शायद आपकी थी, आपको पता ही नहीं है, हालांकि यहाँ कोई डिफरेंसेस होते नहीं है, ये तो बाबा का घर है। और यहाँ थोड़ी कोई हम ये सब माप तोल करने आए हैं, यहाँ कोई मैनिपुलेशंस और कैलकुलेशंस नहीं है। अच्छा, कोई करता भी हो तो करने दो, उसका हमारा तो अपना है ना। और ऐसा नहीं है हमने दीदी से नाता, हमारा तो बाबा से कनेक्शन है तो अब दीदी से कोई नाता नहीं। ठीक है उनको नहीं करनी ना ओम शांति, मैं तो आऊंगी क्लास सुनूंगी, बाबा के कमरे में जाऊंगी फिर चली जाऊंगी, बाबा को ओम शांति करके चली जाऊंगी, दीदी को नहीं करनी आज से, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं करनी? अच्छा आपके मन में आया भी सही तो दीदी से ही जाके बात कर लो कि दीदी आप कल मेरे से ओम शांति नहीं की, तो बात सुलझ गई वहीं की वहीं, बता देंगी वो आपको। कुछ नहीं, जरा तरह सी बातें होती हैं उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी स्थिति उसमें। अब ये बात है क्या आप बताओ, है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं पहाड़ खोदा तो निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, क्या करें उसका? बात इतनी बड़ी बन गई थी, इसलिए बाबा क्या कहते हैं जो महारथी होते हैं ना पुरुषार्थ में स्थिति में, वो क्या करते हैं बड़ी बात को भी छोटा कर देते हैं और जो छोटी बात को बड़ा करते हैं वो प्यादे। हम प्यादे हैं क्या? कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो जाए ना, क्या करो? अंगद समान खड़े रहो। अंगद पता है करैक्टर था रामायण में, कौन था अंगद? बाली का बेटा था। कितना बड़ा था? हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा बच्चा था, बच्चा ही था ना। तो हनुमान तो हनुमान था, भले थी वानरों की सेना, चूज तो भगवान ने की थी ना, राम ने की थी ना चूज। ये सब कौन है? कौन सी? वानरों की सेना। राम ने ही चूज की है ना। कौन से राम ने? शिव बाबा राम ने। वो कहते हैं ना राम चार प्रकार के बताते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो उस राम के हम छोटे से अंगद समान बच्चे और हमारी स्थिति हिल जाए, ऐसा हो कैसे सकता है? सवाल ही नहीं है, नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल, ऐसा बोल देते हैं। ये हो ही नहीं सकता, मेरी स्थिति को हिलाए तो सही, रावण भी हिला नहीं सका, वो अपनी पूंछ की गद्दी बना करके बैठ गया, चैलेंज कर दिया रावण को, चल कर तू क्या करता है। ऐसा ही सीन दिखाते हैं ना, उसकी पूंछ इतनी लंबी थी वो गद्दी बना के ऊंची उसके ऊपर बैठ गया, उससे भी ऊंची गद्दी बना दी। तो ये पूंछ की गद्दी माना छोटी सी बाबा की ज्ञान की बातें, उससे उसने क्या किया, अपनी स्थिति को बना लिया, उस ऊंची स्थिति पर बैठ गया। फिर रावण माया की स्थिति कोई काम नहीं, रावण भी इविल है। देखो रावण की इतनी ताकत थी, वो अंगद था क्या अगर फिजिकली आप देखो तो? रावण तो मोटा ताजा 10 सिर वाला, हाँ ऐसा ही दिखाते है ना, उसके सामने अंगद था क्या? वो तो फूंक मारे और अंगद उड़ जाए, तो रावण को फूंक मारने की भी ताकत खत्म हो गई थी। इविल की भी तो ताकत होती है ना, इविल की कोई कम ताकत नहीं होती, इविल अपने पर आ जाए ना तो कम ताकत नहीं होती, अल्टीमेटली विन नहीं करता कभी भी इविल। आपने देखा होगा कोई फिल्म में विलन जीतता नहीं है, विलन हर फिल्म में होता है, इसी दुनिया की कहानियां है ना। इसी प्रकार हमारा जीवन जिसमें बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सर्वस्व है, बाबा की छत्र छाया के अंदर हम पल रहे हैं, जहां बाबा स्वयं परमात्मा, परमात्मा राम मेरी बैकबोन है, वो मेरा कंपेनियन है, वो मेरा गाइड है, वो मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा कोई कुछ हिला नहीं सकता। कोई परिस्थिति आने दो, बड़ी बीमारी आने दो, धन का लॉस होने दो, कुछ भी होने दो, कोई कुछ भी कह ले, कोई मेरी ग्लानी कर ले, कोई झूठी बातें फैला ले, करने दो। हम डर जाते हैं कई बार कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये हमारी कमजोरी है। और यही कमजोरी क्या करती है, हमें हिला देती है। हमारा मन हिला तो सब हिलता है, और इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, बात करना अच्छा नहीं लगता, दीदियां राय देंगी, अच्छा कोई अच्छे अच्छे बाबा के गीत बजाकर ना वो सुन लो, वो भी अच्छा नहीं लगता। योग तो बिल्कुल नहीं लगता, और मैं तो रिकमेंड करती हूँ योग तो बिल्कुल मत लगाओ उस समय, क्योंकि योग बिल्कुल नहीं लगेगा जब तक आपकी मन की स्थिति थोड़ी भी स्टेबल नहीं है। इससे तो कोई संग, वही बता रही हूँ, इससे तो कोई संग साथ, अच्छा साथ लो जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाए। मुरली मिस मत करो, टूल है ये, मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द टूल। अपने और मुरली सुनने का तरीका क्या, अगर आपको अपने मन को सदा इमोशनली स्ट्रांग रखना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, अगर आपको आगे बढ़ना है न केवल आध्यात्मिक फील्ड में लेकिन आपके जीवन काल में, आपके जीवन क्षेत्र में, कल नहीं सुना रहे थे ललित भाई, अगर आपको अपने जीवन काल में भी आगे बढ़ना, हम कोई राह नहीं देखते कि पैसा आ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, हम राह नहीं देखते, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये तो परछाई है, ये सब चीजें ये परछाई के समान हमारे पीछे आती है, हमें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्रकाश की ओर जाते हैं तो पीछे परछाई आती है। कभी देखना रात को स्ट्रीट लाइट में चलते हुए, अगर स्ट्रीट लाइट आगे है और आप चल रहे हैं परछाई पीछे होगी, अगर स्ट्रीट लाइट पीछे है और आप उसके आगे चल रहे हैं तो परछाई आगे दौड़ेगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आएगी आएगी। तो बात है अपनी स्मृति की कि मेरे मन में रहता क्या है। जैसे कल भी मैं कह रही थी कि क्या हमने कभी अपना आध्यात्मिक जीवन का ग्राफ बनाया है। अपना ग्राफ बनाओ, आप मान लीजिए 10 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से, 2 साल से, 1 साल से, जब से आप इस आध्यात्मिक जीवन में चले हैं तो ग्राफ कैसा है। आज स्थिति अच्छी है, कल फिर नीचे होगी, फिर कुछ मुरली में अच्छी सी बात आई सुनी, फिर ऊंची गई, फिर नीची हो गई, फिर कोई दीदी ने कुछ समझाया, फोन करके बुला लिया, कुछ टोली खिला दी, प्यार कर लिया, फिर स्थिति ऊपर हुई, फिर स्थिति नीची हुई। तो ये जिगजैग वाला ग्राफ नहीं चाहिए हमको, थोड़ी बहुत बातें आती हैं, लेकिन मेरी इतनी समर्थी है, मेरी स्मृतियां इतनी अच्छी हैं कि वो मेरे जो बात आई सेकंड के लिए आई गई और मेरा ग्राफ ऊंचा जा रहा है। इट शुड गो लाइक दिस, तब उस ऊंचे आसन पर हम बैठ सकते हैं, और ना केवल हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं लेकिन हम अन्य को भी स्टेबल कर सकते हैं, अन्य को भी। कई बार कई लोग ऐसी बात करते हैं ना, बेचारा अच्छा खासा आगे जाना जाने वाला व्यक्ति, अच्छा खासा सेवा करने वाला व्यक्ति, वो भी रुक जाता है। कभी कमजोर बात ना करें अपने मुख से, कोई कमजोरी हो भी रही है ना, अंदर कुछ हर्ट हुआ भी है, कुछ लग भी रहा है, लेकिन कभी उसको सामने किसी के ना बोले, किसी का मन खराब ना करे, किसी को हर्ट ना करे। इसलिए आपकी स्मृतियां, आपकी जो स्मृतियां हैं, अगर स्थिति को बनाना है तो आपकी स्मृतियों पर बहुत 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 अटेंशन देना होगा। व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो। हम बहुत सारे थॉट मैनेजमेंट के लेक्चर सुनते हैं, कई करते भी होंगे, कई प्रकार की बातें हैं उसमें, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करते हैं, पर अपने को बनाने के लिए अभ्यास नहीं करते। आदत पड़ी हुई है ना, वो ही करते हैं। अभी अभी ज्ञान की बातें सुनी, अभी अभी अच्छी अच्छी बातें की, अभी अभी बाहर निकलकर फिर वही ईर्ष्या द्वेष नफरत वाली बातों में आ जाते हैं, फिर वही गुस्से वाली बातों में आ जाते हैं। ध्यान नहीं देते अपना, दुनिया का ध्यान देते हैं, अपना ध्यान नहीं देते हैं। जरूरत है अपना ध्यान देने की, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने की। इवन हम सेंटर्स पर रहते हैं, मैं आपको बताऊं, सेंटर्स पर इतना सेवा का कारोबार होता है, समय नहीं मिलता है स्वयं के लिए, लेकिन डेलिबरेटली अपनी नींद का टाइम कम करके, अपने पर्सनल कार्यों का टाइम कम करके, अपने भोजन का टाइम कम करके, अगर हम नहीं बैठते तो हम नहीं बैठ सकते। हमें भी एकांत चाहिए, दिन का घंटा आधा घंटा एकांत में जाकर स्वयं को चेक करें, स्वयं को देखें कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ खड़ा हूं, कितना समय बाकी है। बाबा ने अंदाजा तो दिया है, मुझे इतने साल हो गए ज्ञान में चलते। कई बार लोग बड़ी फकूर से कहते हैं, आपको पता है मैं 25 साल से ज्ञान में चलता हूँ, मैंने ये किया ये किया ये किया, इतने लोगों को कोर्स कराया, फलाना किया फलाना किया, लेकिन मेरी स्थिति आज, अगर मैं क्लास कराती हूँ या मैं भोग बनाता हूँ या बनाती हूँ, और कल दीदी ने किसी और को कह दिया आज है ना आप भोग बनाना, और आपको कहा आज आप है ना ये वाली सेवा करना, क्यों? इतने साल से तो मैं ही भोग बना रहा हूँ, आपने मुझे मना क्यों? क्यों मैं ठीक नहीं बनाता क्या? मैं ठीक नहीं, कितने क्वेश्चंस मन में आ जाएंगे। और ही हो, अच्छा है, कोई बात नहीं, भले बनाए, फिर भी मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप बताइएगा, आपको दूसरी सेवा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कमजोर, नेगेटिव या टॉक्सिक, ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एंगर, जोश, रौब, सब टॉक्सिक है, जहर है ये। और जहर जिस प्याले में होता है सबसे ज्यादा नुकसान उस प्याले का होता है। हम किसी से ईर्ष्या करके उसको शायद नीचे गिरा देंगे, लेग पुलिंग करेंगे, वो शायद अपनी स्थिति बना करके अच्छी बैठा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जरूर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ईर्ष्या तो मेरे अंदर पनप रही थी ना। वो अच्छी स्थिति बना के बैठा, उसकी उसका भी गुस्सा आएगा कि इसकी स्थिति खराब क्यों नहीं हुई, वो भी गुस्सा आएगा। इसलिए जब चेकिंग करने की बात आती है तो एक बहुत सुंदर शब्द है मैनेजमेंट का, आप लोगों में से बहुतों ने सुना हुआ होगा, स्वॉट एनालिसिस। मैनेजमेंट में ये बात सिखाते हैं, जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या बड़े लेवल पर काम करती हैं, तो वो अपना स्वॉट एनालिसिस करती हैं। वो तो बिजनेस के हिसाब से करती हैं कि हमको कितना बिजनेस मिलता है, हमारी इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। स्वॉट माना एस, एब्रीवेशन है, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज और टी से थ्रेट्स। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो देखते हैं कि जिससे मैं मार्केट में आगे रह सकूं, मेरी वीकनेसेस क्या है जिसको मैं हटाऊं और मैं पीछे ना चला जाऊं, मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में सो दैट आई कैन गो स्टिल फर्दर, और कोई थ्रेट तो नहीं है। ऐसे ही हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। हम बिजनेस का कर लेते हैं, शायद मैनेजमेंट से लर्न करके लोग अपने पर्सनल बिजनेस में भी इस चीज को लगाते हैं, इस चीज से अपना एनालिसिस करते हैं। क्या हमने कभी अपना सेल्फ एनालिसिस किया? हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, विच इज नीडेड। और आप थोड़े दिन करके देखिए, यू विल एंजॉय इट, मैं आपको बताऊं, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। स्वेट बता रही हूं, वही बता रही हूं। तो एस माना स्ट्रेंथ, मेरी क्या ताकत है इस आध्यात्मिक जीवन में, या मेरी अपनी लाइफ में, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो मुझे ना आई एम ऑलवेज कूल। कई लोग ऐसे होते हैं, कभी नहीं गुस्सा आता, कितना भी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, ठंडा। और जिनको गुस्सा आता है ना, कहते ये तो बिल्कुल शांति पड़ा रहता है, उनको उसमें भी गुस्सा आता है, तो ये तो उसकी ताकत है। हाँ, आपको भी ठंडा कर रहा है। हम तो कहते हैं भाई यहाँ है ना रेफ्रिजरेटर बिठा दो ठंडा। अच्छा, बात हुई है, मान लीजिए कुछ नुकसान ही हुआ है, फिजिकल नुकसान हुआ, कोई बड़ा सुंदर आपका पॉट था ना, आपने कहाँ से, एग्जीबिशन कभी कभी लगती है वहां से लाया था, और आपने इतने सालों से उसको संभाला था, और मेड आई और उसका चले गलती से लगा, चाहे उसने ध्यान नहीं दिया, वॉट एवर, क्लीनिंग करते करते वो थक टूटा और आपका गुस्सा आया आसमान पर। लेकिन आपने क्या किया, आप कूल हैं, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना आगे से, कभी इस तरफ की सफाई करो ना तो पहले इसको उठा लेना। अपने कूली का चीज तो देखो दोबारा आ जाएगी, हो सकता है वैसी ही ना आए, हो सकता है उससे अच्छी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इट इज अप टू यू व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो सकता है उससे अच्छी आ जाए, पर गुस्सा करने से वो चीज आ जाएगी, मन में बुड़बुड़ करने से आ जाएगी। कई बार हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर 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 बुड़बुड़ाते रहते हैं, इतना अच्छा था, दूसरे कमरे में जाके तीसरे को सुनाएंगे, बोल 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 बोल, जब उस स्थान पे जाएंगे ना, इतना अच्छा सुंदर पॉट रखा था गया, तब वो याद आएगा। उस मेड को भी चार बातें सुना देंगे, वो कहेगी यहाँ कौन काम करेगा, मुझे नहीं आना माता जी, आप किसी दूसरे को बुला लो। तो उसको सुना तो देते हैं ना, अपना तो गया ना, चलो मेड नहीं है मान लीजिए, किसी घर वाले से टूटा, तो इसके सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड हैं इस बात में, आप हम सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। भी आप उसको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मैं आपको बताऊं तो पेशेंस मेरी, आप सिर्फ कूल नहीं हो, आपके अंदर पेशेंस भी है, सिर्फ पेशेंस नहीं है, आपके अंदर टॉलरेंस भी है, और इसके अंदर, इसलिए आपके अंदर शांति भी है, यू मेंटेन दैट पीस। दूसरा कोई बोलने लगा ना आके, अरे शांत, आई विल हैंडल, आप उसको भी शांत, ये आपकी स्ट्रेंथ है। कभी देखिए अपनी स्ट्रेंथ, देखो आप रेगुलरली रेगुलर 6:30 योग का टाइम है, 6:30 में 1 मिनट कम है आप सेंटर पर पहुंच जाते, आपकी स्ट्रेंथ है। आप रेगुलर मुरली सुनते भी हो, लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको फॉलो भी करते हो, आप इतना फॉलो करते हो कि परिस्थितियां आती हैं लेकिन आपकी धारणाएं टूटती नहीं है। कहते हैं जब हम सोचते हैं ना पॉजिटिव और अच्छा सकारात्मक, जब हम सोचते हैं ना तो परिस्थितियां हमारे अनुरूप बन जाती हैं, हमारे अनुरूप बन जाती हैं। पर हम बैठ करके परिस्थितियों को कोसते रहेंगे, लोगों को कोसते रहेंगे, चीजों को कोसते रहेंगे, मौसम को कोसते रहेंगे, सारा दिन कोसने का ठेका लिया हुआ, तो सब कुछ हमारे पास वैसा ही आता है, सब कुछ वैसा आता है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव है उनके पास बीमारी नहीं आती है, आती है, परीक्षा तो देखो आएगी। अब ये स्ट्रेंथ क्या है कि बात आई, लोग आपको कहते हैं आपके पास भी ऐसी परीक्षा, आपके पास भी बीमारी। अब हमारी दादियां हैं, बाबा थे, मम्मा थी, कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधि होती है, तो कुछ लोग वो भी क्वेश्चन करते हैं, बाहर वाले लोग वो भी क्वेश्चन करते हैं, ये तो एग्जाम है। आप ये देखिए ना इस परीक्षा की घड़ी में भी उनके मन की स्थिति कैसी है, आप ये देखिए, ये तो एग्जाम है। एग्जाम तो केजी में भी आएगा, लोअर केजी हो कि अपर हो, पहली दूसरी पांचवी, आप ग्रेजुएशन करो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप रिसर्च करो, एग्जाम तो आना है, थोड़ा रूप बदल जाता है, बाकी एग्जाम तो आना ही आना है, बल्कि बड़ा हो जाता है रूप, वो तो आना ही है। तो जो जिसकी स्ट्रेंथ है ना वो क्या कहेगा कि ये तो एग्जाम है, अभी आया चला भी जाएगा। बाबा कहते बच्चे माया आती है जाने के लिए, तो मैं घबराता नहीं हूं, आई है जाएगी। अच्छा उसको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, कई बार मैंने देखा है ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसी बीमारी आती है, परिस्थिति ऐसी, आपका डॉक्टर ही नहीं है टाउन में, बाहर गया हुआ छुट्टियों में, छुट्टी में डॉक्टर का मोबाइल नंबर है पर वो लेता नहीं है, ना मैसेज लेता ना फोन पे बात करता, नाउ व्हाट यू डू। आपने पहले ही बाबा को तो बुला लिया था लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की आई है कि अब आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको तुरंत ऐसी स्मृति, ऐसी थॉट आएगी आपको प्रॉपर डॉक्टर, या तो जैसे नहीं कोई ऐसे अल्टरनेटिव ऐसे इलाज होते हैं वो सूझेगा, या प्रॉपर डॉक्टर सूझेगा, आपको डॉक्टर भी हेल्प करेगा। हमने कई बार देखा है डॉक्टर अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज देगा। ऐसी भी एक संदेश आया था बाबा का, जिसमें बाबा ने ये बात कही थी कि अगर बीमारी भी होगी ना और आपके मन की स्थिति अगर ठीक है तो आपका डायग्नोसिस ठीक होगा और डॉक्टर को भी सही इलाज टच होगा, दवाई सूट हो जाएगी। नहीं तो होता ना, दवाई सूट ही नहीं हुई, रिएक्शन हो गया, ऐसा भी होता है ना। आई नो सो मेनी केसेस, मैं अभी वो चर्चा नहीं करूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इसी प्रकार वीकनेसेस, मेरी क्या वीकनेसेस, आई मस्ट नो माई वीकनेसेस। कि अमृत वेले उठने का मन तो करता है, रात को बाबा को कह के सोती भी हूं, अलार्म भी लगाती हूं, उठ भी जाती हूं, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, लगता है नींद आ रही है, बिस्तरे पे जाती हूँ फिर नींद आ जाती है, बैठे बैठे योग करती हूँ, झुटका खाती हूँ, फिर लगता है इससे तो सो ही जाओ ना, तो सो के ये कर लो ना, तो सो ही, ये मेरी वीकनेस है। सोचती हूँ कि अब की बार गुस्सा नहीं करूंगी, बस पता नहीं फिर आ जाता है, वीकनेस है। सोचती हूँ अब की बार जोर से नहीं बोलूंगी, पर पता नहीं वीकनेस है, फिर जोर से निकल जाती है बात। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, हम सब अपने आप को जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एकांत में बैठकर अपने लिए टाइम लो, तब आप इन स्मृतियों को समर्थ कर सकेंगे। पहले पता तो हो वीकनेस कहाँ है, किसको निकालना है। जैसे वो कंपनी वाले भी अपनी वीकनेस को ढूंढते हैं, कहाँ हम, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा वीक है। यहाँ एक बात मैं कोट करना चाहूंगी, जापान में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं तो हर कंपनी में ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, फाइनल चीज बन के उस डिपार्टमेंट पर आती है, वो चेक करता है वेदर इट इज मतलब गुड क्वालिटी और नॉट, ताकि मार्केट में जाने से पहले वो कंपनी की इंप्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए। जापान में क्यों नहीं है, वहां हर डिपार्टमेंट क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को, हर संकल्प की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, गुड क्वालिटी संकल्प करते हैं, तो बात ही नहीं है स्थिति बिगड़ने की, है ना। मुझे पता चला यहां मेरी वीकनेस है, ऐसे ऐसे थॉट्स मुझे आ जाते हैं, कभी मन में शंका हो जाती है, अरे करने दो जिसको जो कर रहा है, आप इतने अच्छे थॉट्स उनको सेंड करो ना कि वो जो बुरा करने का सोच रहा है ना वो बंद कर दे। जैसे वो महाभारत में दिखाते हैं ना, एक तरफ से मिसाइल आया कौरवों का, तो इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वो क्या भेजते हैं वो भेजा, तो दोनों को वहीं का वहीं बीच में हवा में ही विनाश हो गए, खत्म, किसी का नुकसान नहीं हुआ। जिसने गलत भेजा था उसका कार्मिक अकाउंट जरूर जमा हो गया, वो होने दो, हम उसकी भी चिंता नहीं करते। इसलिए अपने आप को देखें, मैं कहां कमजोर हूं, मेरी स्थिति क्यों यू 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 वाली है, क्यों मेरी अच्छी ऊंची स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये ज्ञान जादू नहीं है कि आप आज ज्ञान में आए, 7 दिन का कोर्स किया और आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन गई, ऐसा नहीं है। मेहनत है, एफर्ट है, इसमें मेहनत लगती है। इसलिए हमें अपने आप को चेक करना पड़ता है। मैंने खाना बनाया, सब कुछ डाला था, सब कुछ, पता नहीं आज टेस्ट क्यों नहीं अच्छा आया। कई बार देखो किसी को ना पता ही नहीं चलता दाल में क्या कम रह गया। कई बार बहुत सारे गुण होते हैं, एक अवगुण होता है ना सारे गुणों को ढक देता है। सब कुछ डाला है, अदरक भी डाला है दाल में, नींबू भी डाला है, हल्की हल्की मिर्ची, गरम मसाला, तो नमक थोड़ा कम रह गया। जैसे ही नमक डाला ना उसमें, ठीक नमक हो गया, सारा टेस्ट अच्छा हो गया। तो ये वीकनेस मुझे लोकेट करनी है कि कहां मैं वीक हूं। थर्ड था, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूं टाइम को देखते हुए, थर्ड था अपॉर्चुनिटीज। जैसे बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको पता होगा टेंडर निकलते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है जब वो उसके लाइन का होता है तो वो टेंडर भेजता है और इन टाइम भेजना होता है और उसको समझ के भेजना होता है। टेंडर मीन्स वो अपने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज की डिमांड है मार्केट में उसकी वैल्यू लिख के भेजता है, उसमें वो लीक नहीं होनी चाहिए। और अगर वो बहुत ज्यादा भेज देगा तो भी गड़बड़ है, बहुत कम भेजेगा तो भी गड़बड़ है। ना नुकसान होना चाहिए और ना उसका नापास होना चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए बिजनेस। तो वो टेंडर भेजता है। अगर वो जरा आलस कर ले और समय पर ना भेज देता हूँ निकालता हूँ, करता हूँ प्रिंट, तो समय हाथ से निकल जाता है, कोई और ले जाता है बिजनेस। तो ये उसको अपॉर्चुनिटी होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने की। ऐसे ही हमें भी कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने की। ये भट्टी क्या है? अपॉर्चुनिटी माना मौका। ये मौके बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं आते, ये मुश्किल से आते हैं। अब कब से लेकर के मुकेश बहन ने बोला होगा, कुलाबा वाले तो कहते हैं हम आते रहते हैं, तकदीरवान है, लेकिन मुकेश बहन ने कब से भेजा होगा, मुन्नी बहन को कहा होगा, लाइन बनाई होगी, दीदी मेरा ये करना, दीदी मेरा ये बनाना, भाई बहनों को आना, और अब मौका मिला, जिसको लाभ लेना था ले लिया। मिला कि नहीं लाभ, आप सच्ची बताना, मिला ना? कितना लाभ मिला? इतना है, इतना अखूट है, अखूट है, इतना लाभ मिलता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, और ऐसी ही बस अभी सौगात का कार्यक्रम है, शशि बहन आ गए हैं, मैं बाद में पूरा करूं, हाँ बाद में जब टाइम मिलेगा ना तब इस क्लास को मैं पूरा कर दूंगी, थोड़ा सा ही है। तो मतलब हमें ऐसे मौके जो हमें हमारी स्थिति को बढ़ाने के बनाने के आते हैं, हमें उन मौकों को भी ले लेना चाहिए। और थ्रेट्स क्या होते हैं वो आप सोच लेना, ठीक है ना, कि कौन सी ऐसी धमकियां, थ्रेट माना धमकी, ऐसी कौन से थ्रेट्स आते हैं हमारे इस ज्ञानी योगी लाइफ में जो हमारी स्थिति को बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं। फिर कभी एक्स्ट्रा समय लेकर के मैं आपसे चर्चा कर लूंगी, आज या कल, दो ही दिन है हमारे पास अभी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।